Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Istri ne jali dal khila di, laga hua chawal khila diya to vairagya ho gaya. Kaha sansar aisa hi hai. और क्या हुआ? कहा पहुंच गए हरिद्वार, कहा छोड़ो संसार, वैराग्य तो हुआ लेकिन पुत्र पहुंच गया। उसने कहा पिताजी क्षमा करो, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। कहा स्वामी जी घर जाऊंगा। कहा क्यों? आप तो कह रहे संसार मिथ्या है, संसार ऐसा ही है। कहने लगे चलो अपने ही तो हैं, पुत्र है, गलती हो गई कोई बात नहीं। फिर आ गए। ये क्या है? हमारा लगाव बैठा हुआ, हमारा अध्यास, इसी को अध्यास कहते हैं, अभिनिवेश कहते हैं। और अभिनिवेश कब तक रहता है? जब तक कच्चापन है। नारियल में कच्चापन है तब तक वो गिरी, उससे चिपकी हुई। लेकिन वही जल समिट करके उस गिरी में पहुंच गया, और समिट करके गिरी में पहुंचा, परिपाक उसका हुआ। इसी को अभ्यास कह दिया है। अभ्यास न तो कौन थे वैराग्येण, बगैर अभ्यास के वो पकता नहीं। और कोई भी चीज है संकेत किया, कालेन पच्यते विद्या सस्यमेव, जैसे फसल जो है आज वो दो आज नहीं पकेगी। किसान को छह महीने, दो महीने, तीन महीने जैसी फसल है वैसी प्रतीक्षा करनी पड़ती, और जो है उसकी रखवाली करता, उसके विकारों को निकालता रहता, उसमें जल देता रहता, उसमें खाद्य पदार्थ देता रहता, तब जाकर के जो है वो फसल पकी उसे मिलती है, तब उसका लाभ। ऐसी विद्या भी जो है, हम जो है उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परिपाक करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और जब पक जाती है तो जैसे जल जब समिट करके गिरी में पहुंच गया, और गिरी में समिट करके जल जब पहुंच जाता है तो फिर उसमें और परिपाक होता है, तो उससे एक हो जाता है। जैसे ही एक होता है तो तैल रूप बन जाता, और जब तैल रूप बन गया तो वही गिरी जिसको चाकू से निकाल रहे थे लेकिन फिर भी बड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन अब उस गोले को यूं हिलाते हो तो उसमें रहते रहते, और वो उससे अलग हुआ हुआ है, उसी में रहते रहते क्या है, अलग हुआ। तो ये खोपड़ा समझ लो, स्थूल शरीर, ठीक है ना, और उसमें जो है तैलादि वैराग्य समझ लो, और उसमें जो है गिरी है वही कारण शरीर समझ लो, ठीक है ना। तो ये तीनों में एकता वहां पर हो जाती है, और एकता हो जाती तो अलग हुआ हुआ हो जाता। जनक आदि के उदाहरण सुनते हो, पृथु आदि के उदाहरण सुनते हो, उनके जीवन में ये आया, उन्होंने इस व्यक्तिगत ज्ञान को प्राप्त किया, और जब व्यक्तिगत ज्ञान उनके जीवन में आया तो उनकी भी ऐसी स्थिति हो गई। उनको छोड़ करके गुफा में बैठना नहीं पड़ा, उनको छोड़ करके संगम में बैठना नहीं पड़ा है। अपरे गिरीणाम संगमे नदी नाम दियो दिया विप्रो अजायत, यह विप्रत बुद्धि कब प्राप्त होती है? तो कहा नदियों के संगम में है, गुफाओं में बैठ करके एकांत में बैठ, लेकिन यह यहीं पर भी हो जाती, लेकिन कब होगी? तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो ये संकेत किया। तो ये जो है वैराग्य, ऐसा हमारा वैराग्य होना चाहिए, और वो ऐसी जब स्थिति परिपाक की हो जाती है तो तीनों से ही वैराग्य हो जाता है। उसे न स्थूल में अभिनिवेश रह जाता है, न सूक्ष्म में अभिनिवेश रह जाता है, और न कार्य में अभिनिवेश रह जाता, तीनों से ही। और इसका कसौटी इसकी क्या है, कैसे जानोगे? तो देखो इस स्थूल में आपको पता चल जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी सुंदर चर्चा की, अर्जुन के प्रश्न के अनुसार किम प्रभासित किम आसित इत्यादि जब उसने प्रश्न किए तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, यदा माने जिस काल में प्रजाहात त्याग देता है, कहा किसको, सर्वान कामान संपूर्ण कामों, ये स्थूल रूप से संकेत कर दिया। लोक में हम देखते हैं कि जैसी स्थिति मिल गई वहीं पर सो गया तो कोमल कठोरता का उसे बहन ही नहीं रहा, वैराग्य हो गया स्पर्श, और जो खाने में सुपाच्य मिल गया तृप्ति हुई तो ऐसे स्थूल कामों का त्याग तो लोक में देखने में आता है, लेकिन सूक्ष्म जो काम, और सूक्ष्म का पता स्थूल से चलता नहीं, उसकी रहनी सहनी से पता चलता, वो पता कब चलता, जब आपको ही, आपके बाहर के त्याग को तो स्थूल त्याग को तो दूसरा भी जान सकता है, लेकिन आपका जो सूक्ष्म त्याग है उसे दूसरा, उसे कौन जानता, उसे आप ही जान पाओगे कि अभी त्याग हुआ कि नहीं। वो कैसे, यदि स्वप्न आ रहा है तो समझ लेना अभी सूक्ष्म का त्याग नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, जब कह दिया सर्वान कामान प्रजाति, सारे कामों का त्याग कर दिया, फिर रह क्या गया, लेकिन फिर भी क्या बोले, पार्थ मनोगत, मन में रहने वाले, अंतःकरण में रहने वाले, सूक्ष्म शरीर में रहने वाले, उनका त्याग कब पता चलेगा, स्वप्न आना भी बंद, क्योंकि स्वप्न है क्या, अविद्या काम कर्म संस्कारों से ही तो स्वप्न आता, यदि अविद्या काम कर्म की निवृत्ति हो गई तो स्वप्न आएगा ही नहीं, तो स्वप्न। और कहने लगे कारण की कसौटी क्या, चलो सूक्ष्म खा तो अपने को पता चल गया, कारण रूप तो इसके लिए तो उदाहरण ही आता है, क्या उदाहरण, जैसे जड़ भरत, जड़ भरत के अंतर्गत सूक्ष्म और स्थूल काम नहीं किंतु कारण रूप काम पड़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा, तो पुनः जन्म होता है और स्मृति आपको बनी रही तो समझ लेना कि कारण रूप काम बना। तो इसलिए बीज सूक्ष्मा ध्याम सह प्रजहाति, जहां पर बीज रूप, कारण रूप, सूक्ष्म रूप और सह शब्द का अर्थ कर दिया स्थूल, तीनों का त्याग हो जाता है, तब कह दिया स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, वही क्या है स्थित प्रज्ञ, क्यों, आत्मनेव आत्मना संतुष्टा, बोध उस व्यक्तिगत ज्ञान में ही अब एकत्व को प्राप्त हो गया, ये संकेत कर दिया, तो ये वैराग्य की बात आ गई। तो यहां पर संकेत जो किया गया कि ऐसे जो बृहस्पति हैं, ब्रह माने ज्ञान और उसके पति माने स्वामी, उस पर प्रभुत्व रखने वाले, उसको जानने वाले, ऐसे वह बृहस्पति मेरा कल्याण करें, अर्थात वह बल दें, जैसे उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया वैसा ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो, अर्थात दूसरे रूप में उनको गुरु माना गया, तो मने गुरु में पठन पाठन की प्रक्रिया होती है, अर्थात वो अपनी शिक्षा के द्वारा मुझे सुशिक्षित करें और सुशिक्षित करके उस ज्ञान वाला बना, ये प्रार्थना की गई। आगे शब्द आया विष्णु रुक क्रमा, विष्णु शब्द व्यापक शक्ति का परिचायक, उरु माने महान, क्रम माने पूर्व पर की व्यवस्था, पूर्व और पर की व्यवस्था, जन्म, जीवन, स्थिति, ये क्या है, एक क्रम है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये भी क्या है, एक क्रम है, एक व्यवस्था है, हैं? बाल्य, तरुण, वृद्धा, ये भी क्या है, एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था कौन कर रहा है, विचार करो, इस व्यवस्था को देने वाला कौन है, जो अहंकार करते कि करे ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि इस व्यवस्था देने वाला कौन है, बाल्यावस्था और बाल्या से तरुण का आ जाना और तरुण से वृद्धा का आ जाना, आप तो नहीं चाहते कि वृद्धावस्था आ जाए, हैं? कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता कि वृद्धावस्था आ जाए, हाय राम काहेउ भयउ हम डुकरा, याद बुढ़ापा कबहु न कीनो, तबहु आए गयो ससुरा, हाय राम काहेउ भयउ हम डुकरा, नहीं चाहते, हैं? लाठी टेक चलत पग थाके, बालापन के भुनरा, हाय राम काहेउ भयउ हम, तो ये सब नहीं चाहते कि बाल सफेद हो जाए, नहीं चाहते कि झुर्रियां पड़ जाएं, लेकिन ये सब हो रहा है, ये कौन सी व्यवस्था के अनुसार हो रहा और वो व्यवस्था किसकी है, विचार करो, ये क्रम जो है देने वाला कौन है, ये व्यवस्था देने वाला कौन है, जो देने वाला है वही क्या है, और ये कैसी व्यवस्था है, महान व्यवस्था कह दिया, इसमें कोई परिवर्तन कर सकता, ग्रीष्म, वर्षा, शरद है, और जो है शिशिर, हेमंत, बसंत, ये क्रम किसने बताया, ये शीतोष्ण का क्रम किसने किया, कालों का रात्रि दिन संवत्सर आदि ये सब क्रम कहां से है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था देने वाला जो है, इस क्रम की श्रृंखला को प्रवाहित करने वाला जो है वो कहां कर वो करके कर रहा, तो कहा वो सर्वत्र विद्यमान है, उसी अवस्था में भी बैठा हुआ है, पूर्व की अवस्था में भी बैठा हुआ है, पर की अवस्था में भी उसकी सत्ता है, पूर्व पर की अवस्था न रहे मध्य की अवस्था रह जाए लेकिन वह वहां पर भी अवस्थित है, इसलिए उसकी सर्वव्यापकता। तो विष्णु कैसा है का सर्वव्यापक, ऐसे उस विष्णु की यह श्रेष्ठ व्यवस्था है और उसकी व्यवस्था से ही ये सारी सृष्टि चल रही। हम सुनते तो हैं यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम, क्या कहा, जिसने ब्रह्मा को माने सृष्टि के रचयिता को क्या है सबसे पहले निर्मित किया, और निर्मित करके फिर क्या किया, क्योंकि वो निर्माण करने में व्यवस्थित कर सके तो क्या किया, तो कहने लगे कि यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम वेदांश प्रहेणोत, उसी में क्या है वेद ज्ञान का प्रहेणन भी कर दिया, क्योंकि बगैर ज्ञान के कोई कर्म नहीं होते। पहले नियम है जानात इच्छति करोति, पहले ज्ञान होता है फिर इच्छा होती है और इच्छा होने पर फिर प्रयत्न व्यापार होता है, ये नियम है। तो इसलिए पहले उसने उस ब्रह्मा को बनाया, और बनाया क्या, तो इसको भी समझ लो वेद क्या कहता, हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे, जो ये हिरण्यगर्भ है वो उससे भी पहले विद्यमान है, वर्तते माने विद्यमान, उसकी विद्यमानता उसकी सत्ता है, और वही क्या हुआ हिरण्यगर्भ हो गया। हिरण्यगर्भ क्यों कहा, तो बड़ी मोटी भाषा में समझ लो हमारे अंदर अहम जो है ये क्या हिरण्य रूप है, और ये कहां आया, तो ये चिदाभास कहां आया, तो चिद में ही आया है ना, तो हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे, और वैसे ही समष्टि की दृष्टि से सोच लो, इसे ब्रह्मा आदि हिरण्यगर्भ कहते, समवर्ताग भूतस्य जातः, वही क्या करने वाला है सारे प्राणियों को सारे भूतों को उत्पन्न कर, भूतस्य जा पति रेक आसी, वो केवल एक ही पति, यहां तो अनेक बतला दिए, गुण विशेष को लेकर के इंद्र भी कह दिया, वरुण भी कह दिया, मित्र भी कह दिया, एक एक देश विशेष के एक एक गुण विशेष के देवता, लेकिन इन सबका भी जो है संयमन करने वाला, सब में भी जो व्यापक रहने वाला, सबको भी ये सामर्थ्य देने वाला वो कौन है, तो कहने लगे वो व्यापक शक्ति है, उस व्यापक शक्ति को विष्णु नाम दे दिया, और वो ही इस सब में ये सब करवा रही, उसके बल से ही ये सब हो रहा। तो ऐसी जो व्यापक शक्ति है वो व्यापक शक्ति से फिर प्रार्थना करने लगा ऋषि कि विष्णु रुक क्रमा, वह विष्णु है क्या करें हमारा कल्याण करें, अर्थात कल्याण करें, कल्याण कब होगा जो हमारे अंदर उससे विपरीतता है उसकी निवृत्ति हो जाए और परीतता आ जाए तो कल्याण हो जाए, तो वो शक्ति हमारे अंतर्गत दे दें, ये संकेत किया। अब और विचार कर लो, इस व्यवस्था को आप विचार करके देखें, जैसे कह दिया जन्म जीवन और मृत्यु और सर्व की सत्ता प्रतीयमानता, ये क्या है पूर्व पर की जो व्यवस्था है कैसे होती, तो वेद में इस बात को लेकर के बड़ा सुंदर मंत्र आया शुक्ल यजुर्वेद में, और भगवान ने उसको सरल ढंग से गीता में कहा। तो वेद में मंत्र आया त्वा मौषधि सर्वा शोम, और दूसरे कृष्ण यजुर्वेद को लेकर के थोड़ा परिवर्तन भी किया, वहां संकेत किया त्वा मिमा मौषधि विश्वाह त्वं आपाह अजनयस त्वं गा, ये संकेत त्वं आतंतोर वंतरिक्षम बवर्थ तम ज्योतिषा वितमो ववर्थ, ये मंत्र आया वेद, क्या मतलब है इसका, तो संकेत किया उसी विष्णु की तरफ सर्वव्यापक शक्ति की तरफ, कहा तुम आप ही क्या हो इमा, ये जितनी भी औषधियां हैं वो औषधि तुम, और वहां साथ में वनस्पति को भी ग्रहण कर ली। औषधि और वनस्पति में फर्क क्या है, तो हर वेद शास्त्र में इसकी चर्चा आई। क्या कहा? फल पक्वांता औषधया, जो पौधा फल दे करके और फल उसका पक जाए और पकने पर पौधा नष्ट हो जाए तो उसका नाम क्या है? औषधि। औषधि। और जो पौधा फल दे, पक जाए, फल तो गिर जाए लेकिन पौधा बना रहे, तो उसे क्या कहते हैं? वनस्पति। उसे क्या कहते हैं? तो ये औषधियां और वनस्पतियां, यही क्या है? यही सारी सृष्टि का जीवन है। इन्हीं को लेकर के सारी सृष्टि होती। आप गीता में पढ़ते हो, अन्नात् भवन्ति भूतानि। किससे होते? कहा अन्नात् भवन्ति भूतानि, संकेत कर दिया। अब वो अन्न क्या है? तो कहा त्वामिमा है औषधि विश्वा त्वम आपः अजनयस्त्वंगा। क्रम दे दिया, मने ये सारी औषधियां तुम हो। और वहां नाम ले लिया क्या? सोम। क्या नाम ले दिया? सोम। अब सोम शब्द का अर्थ भगवान शिव का परिचायक भी है। सोम शब्द का अर्थ जो है चंद्रमा का भी है, है ना? चंद्रमा को भी सोम शब्द से कहते, भगवान शिव को भी सोम कहते, और लता विशेष के रस का नाम भी सोम। यज्ञों में सोम रस निकालना, ये सब चलता है। तो अब ये जो है यहां पर सोम नाम दिया, और सोम नाम देकर के संकेत किया कि हे सोम इमा, ये सब औषधियां जो हैं वो कौन है? कहा तुम हो। इसमें सब में तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी सत्ता के बगैर ये कोई भी औषधि हो सकती नहीं, और औषधि नहीं होगी तो जीव कहां से होगी? अन्नाद भवंत भूतानि। और आगे कह भी दिया, कहा औषधि भी कब होती है? तो वहां पर भगवान ने गीता में कह दिया पर्जन्यादन्न, पर्जन्य से, जल से क्या होती है? कहा ये सारी की सारी अन्न औषधि आदि जो भी वनस्पति आदि है वो होते। और वहां क्या कहा? कहा तुमने क्या किया? ये औषधि तुम हो, क्यों हो? कहा तुम विश्वा तुम आपा अजनयस, क्योंकि उस जल को भी पैदा करने वाले तुम, अर्थात वो जल भी तुम। इसलिए नारायण आदि शब्द में नारा आपा प्रोक्तो इत्यादि करके बतलाते, वो जल भी तुम हो। और श्रुति भी कहती नारम नीरम भुवन मुदकम जीवनीयम दकं च, ये संकेत किया जल के पर्याय शब्द कह करके। और अन्यत्र भी देखो क्या संकेत किया, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, और पानी गए न ऊबरे मोती मानुक चून। ऋषियों ने जिन्होंने अनुभव किया वो कह दिया। तो वहां संकेत किया कि तुमने ही इन औषधियों को धारण किए हो, औषधियों को पैदा किया है, व्यवस्था दी है। और वो व्यवस्था का क्रम क्या? तो कहा जल, जो भगवान ने गीता में संकेत किया, क्योंकि भगवान ने तो निचोड़ा ही है सबको। तो कहने लगे उस जल को भी पैदा करने वाले तुम ही हो, जल को भी जलत्व सत्ता देने वाले भी तुम। और जल वैसे है क्या? जायते लियते इति जल, है ना? जो उत्पन्न होवे और लीन हो जावे उसे क्या कहते? जल कहते। और तो आप कह दोगे कि दो गैसों के मिश्रण से जल बन जाता है, तापमान की है न्यूनता और जो अधिकता को लेकर के जल का होना और न होना हो जाता, ये सब संकेत कर दो। लेकिन वो तापमान भी कहां से? तो आगे संकेत उसका। तो अब जो है कहने लगे त्वंगा, और उस सबको कहकर, और फिर जो है जीवन धारण करने का दूसरा रूप क्या है? तो गौ का दूध पीते हो तो जीवन बढ़िया रहता, बल रहता। तो उस गौ को भी उत्पन्न करने वाला कौन है? कहा तुम, गौ रूप भी तुम। और कहा इतना ही नहीं, त्वावातंथोरवंतरिक्षम, ये जो अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में जो कुछ भी है क्या है? तो कहा वो भी, उसका भी विस्तार करने वाले आप ही हो। और तुम ज्योतिषा वितमो ववर्थ, और अंधकार को दूर करने वाले, तम को दूर करने वाले भी ज्योतिष स्वरूप जो है वो कौन हो? कहा तुम ही हो। ये चर्चा की। अब यहां पर देखो, यहां पर जो है भगवान ने वहां यज्ञ का रूप बतलाया और यहां पर भी यज्ञ के विषय में ही ये मंत्र आया। तो भगवान जो है यज्ञ को लेकर, इसलिए पुरुष सूक्त में तस्मा यज्ञात सर्वोता ऋचम सामान जगिरे, उसने ही यज्ञ करके ही परमात्मा ने क्या किया, यज्ञ रूप से ही क्या किया, कहा सारे वेदों को उत्पन्न कर दिया, भावी तुंग गाय को उत्पन्न कर दिया, घोड़े को उत्पन्न कर दिया, बकरी को उत्पन्न कर दिया, है अजावया इत्यादि करके तुमस्व आजायंत ये के चो भया दता गावो हो जगरे तस्मा तस्मा जाता अजावया, ये संकेत किया। तो वही जो है चर्चा यहां की, उस सारे को करने वाला कौन, सारी व्यवस्था देने वाला कौन है, तो वो विष्णु। और ऐसा जो विष्णु है जो सारी व्यवस्था देने वाला, वो जो है कैसा है, तो उसकी व्यवस्था कैसी है, महान है, उरु है। ऐसे उससे हम प्रार्थना करते हैं कि वो क्या करे, सम करे, कल्याण करे। अब इस पर चर्चा है, कल करेंगे। अब एक बात इसका अर्थ और है, आप बलि के प्रसंग में सुनते हो यही भगवान विष्णु क्या बने, बावन बने, और बावन बन करके इन्होंने क्या किया, अपने पैर से नाप, तो जिस समय पैर से नापा उस समय इनके पाद विच्छेप का नाम भी है उरुक्रमा, पाद विच्छेप, उरुक्रम शब्द का अर्थ क्या है, पाद, उन्होंने अपने पैर का विच्छेप किया, फैलाया, और फैलाया तो वहां संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड अनेक है और ब्रह्मांड की परिधियां जो है मिली हुई है, और जब भगवान ने अपने पैर का विच्छेप किया तो क्या है, परिधि टूट गई, और परिधि टूट गई तो वहां ब्रह्मा जो उस तरफ थे उन्होंने जो है उस पैर को जैसे ही देखा तो समझ गए, और समझ गए तो पैर का प्रच्छालन कर लिया, और प्रच्छालन कर लिया अपने कमंडल में रख लिया, वही क्या है, का वही गंगा जी, ये भी सब चर्चा थी। तो ज्ञान, गंगा भी ज्ञान का भी प्रचायक है, तो ये सब सारी चर्चाएं हैं, लेकिन अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम।